नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रशांत कुमार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फिर से हमला शुरू किए। कनाडा और पांच नॉर्डिक देशों ने रक्षा सहयोग पर सहमति जताई। कनाडा अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। नेपाल के गोरखा जिले में सड़क दुर्घटना में 7 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया सरकार बाढ़ प्रभावित उत्तरी क्षेत्र की सहायता के लिए सेना तैनात करेगी। और बैंकॉक में विश्व फ्यूचर्स कप मुक्केबाजी में भारत ने 1 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष 16वें दिन भी जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर फिर से बड़े हमले किए हैं। ईरान के औद्योगिक शहर इस्फहान पर कई हमले हुए हैं, जिसमें 15 लोग मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा और नौवहन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शनिवार को ड्रोन हमले और आग लगने से बंदरगाह पर अस्थायी रूप से बाधित हुई तेल की लोडिंग अब फिर से शुरू हो गई है। रविवार को 80,000 टन से अधिक के क्रूड तेल वाला एक भारतीय जहाज फुजेरा से भारत के लिए रवाना हुआ। फुजेरा पाइपलाइन से प्रतिदिन लगभग 10 लाख बैरल क्रूड ऑयल की ढुलाई होती है। ये वैश्विक तेल मांग का लगभग 1% है और ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक प्रमुख निर्यात मार्ग रूप में कार्य करता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष के बीच भारत सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति में किसी भी प्रकार के संकट से इंकार किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी खुदरा दुकान या वितरक के पास एलपीजी की कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। संयुक्त सचिव ने नागरिकों से एलपीजी सिलेंडर की जल्दबाजी में बुकिंग नहीं करने और आवश्यकता पड़ने पर डिजिटल बुकिंग करने का आग्रह किया।
लास्ट डिलीवरी से नेक्स्ट बुकिंग के बीच में अर्बन एरिया में मिनिमम 25 डेज का गैप है और रूरल एरियाज में जो 45 दिन का है। सभी देशवासियों से एक अपील है कि कृपया डिजिटल जो बुकिंग के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज करें। कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास जाकर लाइन में खड़ा होकर बुकिंग करे या सिलेंडर की डिलीवरी ले।
रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने आज राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ रहे 28 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। शहर के मेयर सरगेई सोबियानी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। हालांकि मेयर ने जमीनी स्तर पर हुए नुकसान या हताहतों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। ये घटना रूस द्वारा मॉस्को की ओर लक्षित 16 यूक्रेनी ड्रोन को रोकने के एक दिन बाद हुई है। रूस की नागरिक उड्डयन एजेंसी ने घोषणा की है कि ड्रोन हमलों के कारण राजधानी के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित वनुकोवो और शेरेमेत्येवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परिचालन निलंबित कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आज कहा कि वे रूस और अमेरिका के साथ त्रिपक्षीय शांति वार्ता के अगले दौर के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका और रूस को बैठक का स्थान और समय तय करना है। पत्रकारों से बात करते हुए श्री जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि ईरान संघर्ष यूक्रेन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे यूक्रेन के हवाई रक्षा भंडार कम हो सकते हैं, जिन पर वे रूस के मिसाइल हमलों से खुद को बचाने के लिए निर्भर हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कल से 10 अप्रैल तक होने वाली 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बोर्ड ने बताया है कि पहले स्थगित की गई परीक्षाएं भी रद्द रहेंगी। पश्चिम एशियाई क्षेत्र में कक्षा 12 के परीक्षार्थियों के लिए परिणाम का तरीका बाद में घोषित किया जाएगा। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख अबू मैथन जॉर्ज ने आज सऊदी अरब के सीबीएसई से संबद्ध विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ एक वर्चुअल वार्ता आयोजित की। श्री अबू मैथन जॉर्ज ने उन्हें वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति और भारतीय समुदाय को समर्थन देने के लिए दूतावास की पहलों के बारे में जानकारी दी और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर एयरवेज अगले दो दिनों में भारत के लिए तीन और उड़ानें संचालित करेगा। ये उड़ानें कतर से नई दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए संचालित होंगी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। कनाडा और पांच नॉर्डिक देशों ने सैन्य औद्योगिक उत्पादन और रक्षा खरीद में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा नए वैश्विक गठबंधनों को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। श्री कार्नी ने कनाडा की अमरीका पर निर्भरता कम करने और व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए चीन, भारत, यूरोप और पश्चिम एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने पर बल दिया है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और कनाडा के नेताओं ने आज ओस्लो में मुलाकात की और दक्षता में सुधार तथा सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रक्षा खर्च पर समन्वय का संकल्प लिया। कजाकिस्तान में लोग एक नए संविधान पर जनमत संग्रह के लिए मतदान कर रहे हैं। इस संवैधानिक परिवर्तन के माध्यम से देश के राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलाव लाने की तैयारी है। इससे मध्य एशिया के सबसे बड़े देश में राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट टोकाइव की सत्ता पर पकड़ और मजबूत होगी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत कजाकिस्तान की दो सदस्यीय संसद का एक सदन में विलय कर दिया जाएगा। नेपाल के गोरखा जिले में कल शाम एक बस दुर्घटना में 7 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बस में 16 लोग सवार थे, जिनमें 14 भारतीय तीर्थयात्री शामिल थे जो मनकामना मंदिर से लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल थे। घायलों का उपचार किया जा रहा है। बस का चालक बच गया है जबकि उसका सहायक घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और आगे की जांच जारी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज घोषणा की कि उत्तरी क्षेत्र में कई दिनों से जारी भीषण बाढ़ से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए सैन्य टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अल्बनीज ने कहा कि सरकार ने रक्षा बल को राहत कार्यों में सहायता के लिए मंजूरी दे दी है। रक्षा बल उत्तरी क्षेत्र में स्थित कैथरीन शहर के आसपास के समुदायों में राहत कार्यों में मदद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज उत्तरी क्षेत्र में कई दिनों से जारी भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सेना की तैनाती की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार उत्तरी क्षेत्र के कैथरीन शहर में पिछले लगभग 3 दशकों में सबसे भीषण बाढ़ आई है। बाढ़ के कारण डार्विन नदी के आसपास कई घर जलमग्न हो गए हैं और ग्रामीण इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी फ्यूचर्स कप में भारत ने एक स्वर्ण सहित 5 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। टूर्नामेंट के अंतिम दिन भारत ने 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम महिला भार वर्ग में उज्बेकिस्तान की मार्दोनोवा नाजकोट को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में गुंजन ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में और जॉयश्री ने 54 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग में एल अंबेडकर मितई ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले टूर्नामेंट में राधामणि लोंगजाम ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। अमेरिका में NCAA इंडोर चैंपियनशिप में सेल्वा प्रभु ने ट्रिपल जंप में रजत पदक जीता है। प्रभु ने कल लगभग 17 मीटर से अधिक की छलांग लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने करियर में पहली बार 17 मीटर की बाधा को पार किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते के लिए तैयार नहीं। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। कनाडा और 5 नॉर्डिक देशों ने रक्षा सहयोग पर सहमति जताई। कनाडा अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। नेपाल के गोरखा जिले में सड़क दुर्घटना में 7 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया सरकार बाढ़ प्रभावित उत्तरी क्षेत्र की सहायता के लिए सेना तैनात करेगी। और बैंकॉक में विश्व फ्यूचर्स कप मुक्केबाजी में भारत ने एक स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।